पृष्ठ संख्या 32, अध्याय 2। नीचे उतर बसंती, गिर गई तेरी हड्डी पसली नहीं बचेगी। उतर नीचे। कुछ नहीं होगा बीवी जी, आम के पेड़ की टहनी पर से दोनों टांगे लटकाए कच्चे आम का छिलका चबाते हुए बसंती बोली। आपके लिए अमिया तोड़ूं बीवी जी, उसने चहक कर कहा और झट से ऊपर वाली टहनी को पकड़कर मोटी डाल पर खड़ी हो गई और फिर उचक कर टहनियों पर चढ़ने लगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, उतर नीचे, तू नीचे उतर। पर बसंती गिलहरी की तरह ऊपर चढ़ती जा रही थी। पृष्ठ संख्या 33। ऊपर बड़ी बड़ी अमियाँ हैं, दो आपको दूंगी, एक मैं खाऊंगी, ठीक बीवी जी? और वह जोर जोर से हंसने लगी। एक हल्की सी टहनी पर बसंती ने पाँव रखा तो वह लचक गई। बसंती ऊपर वाली टहनी को पकड़े रही पर फिर भी उसके पैर उखड़ गए और वह टहनी पकड़े पकड़े झूलने लगी। देखा देखा, मैंने कहा था या नहीं, नीचे उतर, मैं कह रही हूँ। पर दूसरे छोर बसंती फिर से खिलखिलाकर हंस रही थी। मुझे कुछ नहीं होगा बीवी जी, और वह फिर ऊपर वाली डाल पर चढ़ गई। हाय, इन अमियों को तो तोते खा गए हैं, इतनी बड़ी अम्मी है बीवी जी, बसंती चिल्लाई। यह तोते चोंच मारते रहे हैं, तोते का जूठा तो आप खा लेंगी ना बीवी जी? बसंती हंसकर बोली। चुप रह, नीचे उतर, मुझे नहीं चाहिए तेरी अम्मी। कवे का जूठा नहीं खाना चाहिए, पर तोते का जूठा तो खा लेते हैं, क्यों ना बीवी जी? तेरे साथ में सारा वक्त सिर खपाई नहीं कर सकती, नीचे उतर, मैं कहती हूँ। यह लो बीवी जी, एक। ऊपर कहीं टहनियों पत्तियों में छिपी बसंती ने एक बड़ी सी अम्मी नीचे की ओर फेंकी जो जमीन पर गिरते ही फट गई। बस बस, अब और नहीं चाहिए, अब नीचे उतर। अच्छा, आ रही हूँ बीवी जी, आप नहीं चाहती तो ना सही, मैं फेंकूंगी ही नहीं, मैं ऊपर ही बैठी बैठी खा लूंगी। और फिर हंसने लगी। थोड़ी देर बाद बसंती एक टहनी से दूसरी टहनी पर उतरी, पर फिर जमीन पर उतरने के बजाय उछलकर बालकोनी पर चढ़ गई और पलक मारते बालकोनी की इकहरी दीवार के ऊपर खड़ी हो गई और दोनों बाहें दाएं बाएं फैलाए दीवार पर चलने लगी, वैसे ही जैसे नट तनी हुई रस्सी पर चलने लगते हैं। श्यामा का कलेजे मुंह को आ गया, घबरा कर उसने आंखें बंद कर लीं और आंगन में रखी एक कुर्सी पर बैठ गई। बसंती अभी गिरी की गिरी, अब यह नहीं बचेगी, इसका सिर फूट जाएगा। कौन सा बुरा दिन था जब यह। पृष्ठ संख्या 34। लड़की मेरे पल्ले पड़ी। पर ये शब्द मुंह से निकलते ही श्यामा बीवी ने अपना होंठ दांतों तले दबा लिया और दुपट्टे के अंदर ही दोनों हाथ जोड़ दिए। बसंती धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। यदि उसका संतुलन बिगड़ जाए और वह दाएं हाथ जा गिरे तो बालकनी के अंदर ही गिरेगी, लेकिन अगर बाएं हाथ को गिरे तो सीधा 15 फुट नीचे आंगन के पक्के फर्श पर गिरेगी। सोचकर ही दिल दहल उठता था और उसे बचाने का भी कोई साधन नहीं था। जब श्यामा बीवी ने आंखें खोली और डरते डरते ऊपर की ओर देखा तो बसंती दीवार के दूसरे सिरे तक जा पहुंची थी। मैं हाथ जोड़ती हूँ, उतर आ, श्यामा बीवी ने सचमुच हाथ जोड़कर कहा। क्षण भर बाद बसंती बालकोनी के अंदर की ओर कूद गई। श्यामा ने चैन की सांस ली और बड़बड़ाती हुई घर के अंदर चली गई। श्यामा बीवी भाग्य से डरती थी। शादी के लगभग 10-12 साल बाद श्यामा के दाम्पत्य जीवन पर एक छाया सी मंडराने लगी थी। ज्यों ज्यों घर में पैसा आने लगा था, यह छाया गहरी और गहरी होती चली गई थी और श्यामा का मन शंकित रहने लगा था कि कहीं कोई अनर्थ होने जा रहा है। उसके मन में सारा वक्त धुक धुकी लगी रहती थी कि कोई अनहोनी बात होने वाली है। यहाँ तक कि जब कभी दरवाजा भी खटकता तो श्यामा का दिल धक धक करने लगता कि न जाने कौन आया है, क्यों आया है। वह डॉक्टरों के पास भी गई, गंडा ताबीज भी करवाया। किसी ने कहा पुखराज की अंगूठी पहनो, उसने वह भी पहनी, पर दिल की धुक धुकी शांत नहीं हुई। तभी एक दिन एक साधु महाराज ने अपना कृपालु हाथ उसके माथे पर रखते हुए कहा, तेरी धुक धुकी खत्म हो जाएगी बीवी, तू चिंता नहीं कर। श्यामा ने हाथ बांध दिए और सिर नवा दिया। सेवा में तेरी मुक्ति है बीवी, किसी एक मनुख की सेवा कर, तेरा कष्ट दूर हो जाएगा। किस मनुख की सेवा करूं महाराज? तुम्हें ढूंढना नहीं होगा, वह अपने आप तेरे सामने आ जाएगा। कल पृष्ठ संख्या 35, सवेरे घर से बाहर पांव रखने पर जो मनुख तेरे सामने आए वही तेरी सेवा का पात्र होगा। वह कोई भी क्यों न हो, तो उसी की सेवा करना। और दूसरे दिन प्रातः जब श्यामा ने घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर की ओर झांका, तो यही कलमोही बसंती उधर से गुजर रही थी और श्यामा ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया था। बसंती श्यामा के घर काम करने लगी। श्यामा ने उसे इस बात का भास नहीं होने दिया कि गुरु महाराज के आदेश से उसने बसंती को काम पर लगाया है, पर वह आए दिन उसकी छोटी मोटी मदद करने लगी। कभी कोई पुराना कपड़ा दे देती, तीज त्यौहार पर मिठाई और पैसे दे देती, पास में बैठा कर टीवी दिखा देती। बसंती भी धीरे धीरे हिलने मिलने लगी। उसे भी महसूस होने लगा कि श्यामा बीवी के घर का दरवाज़ा उसके लिए हर वक्त खुला है। राह जाती हुई वह बेधड़क सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँच जाती। मन आता तो चाय बनाकर पी लेती, मन आता तो श्यामा का सिर दबाने लगती और उसे गली जहान के किस्से सुनाने लगती। अन्य नौकरानियों वाली बात उसमें नहीं थी। बसंती को एक सहारा मिल गया था जबकि श्यामा पुड़े कमा रही थी, और गुरु महाराज का कहा सचमुच सही साबित होने लगा। उसके मन की धुकधुकी सचमुच कम हो गई। रक्तचाप कम तो नहीं हुआ था, पर बढ़ा भी नहीं था। भूख पहले से भी ज़्यादा चमक कर लगने लगी थी। उधर गुरुदेव की कृपा के प्रमाण आए दिन मिलने लगे थे। सास से झगड़ा तो आए दिन की बात थी, पर एक दिन जब झगड़ा बढ़ गया और सास ससुर अपना बुरिया बिस्तर बांधकर अपने छोटे बेटे के घर रहने चले गए, तो श्यामा को इसमें गुरुदेव की कृपा का ही चमत्कार नजर आया। 10 साल तक छाती पर चढ़कर बैठे रहे, हिले तक नहीं, और आज बुरिया बिस्तर बांधकर अपने आप चले गए। या गुरु महाराज की महिमा नहीं तो और क्या है? और श्यामा बसंती के प्रति और भी ज़्यादा उदार रहने लगी। कभी कभी जब बसंती बहुत ज़्यादा मनमानी करती तो श्यामा खींच उठती। उसका मन चाहता उसे निकाल बाहर करे, पर गुरु महाराज के डर से कुछ कर नहीं पाती थी। और वह अपने मन को समझाने लगती, भले ही यह कैसी है पर मुझे इससे क्या, मुझे तो गुरु महाराज का हुक्म बजा लाना है। थोड़ी देर बाद बसंती श्यामा बीवी के साथ बरामदे में बैठी थी। पृष्ठ संख्या 36। अगर नीचे गिर पड़ती तो क्या बीवी जी? बसंती ने हंसकर कहा और सिर झटक दिया। टांग टूट जाती, खोपड़ी फट जाती तो क्या बीवी जी? बसंती ने फिर हंसते हुए कहा। टांग टूट जाती तो कुछ नहीं होता? क्या हो जाता बीवी जी, टांग ही तो टूट जाती, टूट जाती तो टूट जाती। नहीं टूटी, इसीलिए इतना बोल रही है। टूट जाती तो इस वक्त खाट पर पड़ी चिल्ला रही होती, बहुत ऐंट ऐंट कर बोलती है, कभी भगवान तुझे इसकी सजा देंगे। भगवान जी खुश कब हुए हैं, बसंती ने कहा। भगवान जी मेरे साथ तो सदा ही मुंह फुलाए रहते हैं यो, बसंती ने गाल फुलाए हुए कहा, और कहते ही ठहाका मारकर हंसने लगी। ऐंट कर बोलो तो भी नाराज, हंसो तो भी नाराज, पेड़ पर चढ़ जाओ तो भी नाराज, नीचे उतरो तो भी नाराज, और अपने ही मजाक पर खिलखिलाकर हंसने लगी। हत, ऐसा नहीं करते, भगवान जी से डरकर रहना चाहिए। किस किस से डरकर रहूं बीवी जी? बापू से, माँ से, आपसे, भगवान से। फिर श्यामा बीवी को नाराज देखकर उसे मनाने लगी। लाओ बीवी जी, आपके बाल बना दो, बालों में तेल लगवाएंगी। ऊह, आप तो सचमुच नाराज हो गई। मुझे कोई तेल वेल नहीं लगवाना, चली है अब मेरी खुशामद करने। आगे से कभी पेड़ पर चढ़ी तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। नहीं चढ़ूंगी बाबा, नहीं चढ़ूंगी, वचन देती हूँ। कान पकड़कर वचन दूँ? नाक से लकीर डालकर वचन दूँ? और बसंती ने हंसते हंसते दोनों कान पकड़े और झुककर जमीन पर अपनी नाक रगड़ दी। मैं वचन देती हूँ कि आगे से कभी कच्चा आम नहीं खाऊंगी, सदा पक्का आम खाऊंगी। और फिर खिलखिलाकर हंसने लगी। श्यामा बसंती की ओर देख देख कर हैरान हो रही थी कि इस लड़की के अंदर भगवान ने हंसी के कैसे सोते डाल रखे हैं, बात बात पर इसकी हंसी। पृष्ठ संख्या 37 फूटने लगती है। भगवान ने शरीर तो इसे लड़की का दिया है, पर आत्मा जैसे पक्षी की। तभी यह सारा वक्त फुदकती चहकती फिरती है, एक मिनट के लिए भी चैन से नहीं बैठ सकती। बालों में तेल लगा दूं बीबी जी? नहीं। झाड़ू लगा दूं बीबी जी? बरामदा गंदा हो रहा है। चाय बना दूं बीबी जी? और कहते ही कहते हो करके हंसने लगी। जा बना ला चाय, अपने लिए भी बना ला, मेरे लिए भी। चीनी कम डालना। अपने प्याले में भी कम डालूं? और हंसती हुई रसोई घर में चली गई। तभी रसोई घर में से फिल्मी धुन सुनाई देने लगी। डॉट डॉट बुढ़ा मिल गया, डॉट डॉट मैं क्या करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। बसंती बार बार फिल्मी गीत की एक ही पंक्ति दोहराए जा रही थी। और कुछ नहीं, खुश तो रहती है, हंसती खेलती तो रहती है, श्यामा ने मन ही मन कहा। बसंती के प्रति उसका गुस्सा बहुत कुछ ठंडा पड़ चुका था। बसंती एक हाथ में चाय की प्याली और दूसरे हाथ में चाय का मग उठाए श्यामा बीवी की ओर आने लगी। जिस दिन हमारी बस्ती तोड़ने आए थे बीवी जी, उस दिन मेरी शादी होने वाली थी। आपको मालूम है, बस्ती तोड़ने वाले नहीं आते तो इस वक्त मैं क्या कर रही होती? और बसंती फिर गुड़कने लगी। क्या कर रही होती? श्यामा ने पूछा। इस वक्त मैं लंगड़े के पांव दबा रही होती। नहीं, इस वक्त मैं लंगड़े की दूसरी टांग भी तोड़ रही होती। और वह खी खी करके इतने जोर से हंसी कि मग में से चाय छलक कर फर्श पर गिर गई। ब्याह हो जाता तो क्या बुरा था, चैन से रहती। लोगों के घरों में बर्तन तो नहीं मांजने पड़ते, वहाँ चैन से बैठती। हाँ जी, लंगड़ा आता तो उसके पांव दबाती, उसकी लाठी पकड़कर उसे चक्कर लगवाती, उसके गंजे सिर में तेल डालती। और बसंती फिर खी खी करने लगी। पृष्ठ संख्या 38 तेरा बाप कैसा है? ओ बीवी जी, क्या पूछती हो? अच्छा भला है, खूब थप्पड़ झाड़ता है, आज भी थप्पड़ खाकर आई हूँ। तुझे ही मारता है या घर के और लोगों को भी? कभी कभी माँ को भी दो हाथ लगा देता है, पर ज्यादा कृपा तो मुझ पर ही करता है। और बसंती हंसने लगी। और रामू को? हाय नहीं बीवी जी, उसे क्यों थप्पड़ मारेगा, वह तो बेटा है, एक ही बेटा है ना, इसीलिए। तुम कितनी बहाने हो बसंती? एक ही बेटा क्यों है बीवी जी, तीन तीन बेटे हैं और तीन तीन बेटियां। तेरा एक भाई तो चपरासी है जिसके अपने बाल बच्चे हैं, और कौन है? मेरा एक और भाई भी था, मगर हमने उसे बहुत दिनों से देखा ही नहीं है। क्यों, ना जाने वह कहाँ पर है? वह बहुत अच्छा था, मुझसे बड़ा था, पर तब मैं बहुत छोटी थी, बहुत दिन पहले की बात है ना। तब हम लोग गाड़ी में अपने गांव से दिल्ली आ रहे थे। सहसा बसंती की आवाज़ धीमी पड़ गई। ना जाने वह कहाँ पर है, कैसा है भी या नहीं? क्यों चुप क्यों हो गई? क्या वह कहीं चला गया है? कुछ मालूम नहीं बीवी जी, वह भी मुझ जैसा ही था, एक जगह पर टिककर बैठ नहीं सकता था। जब किसी आई स्टेशन पर गाड़ी खड़ी होती तो वह झट से कूदकर बाहर निकल जाता और चलने लगती, तो कभी एक दरवाजे से तो कभी दूसरे दरवाजे से अंदर आ जाता। मेरे साथ आदमीचौली खेल रहा था, पर जब हम लोग दिल्ली पहुंचे तो वह था ही नहीं। क्या हुआ? कुछ मालूम नहीं बीवी जी, माँ और मेरी बड़ी बहनें किसी दूसरे डिब्बे में बैठी थी, और मैं और बापू और यह भाई अलग डिब्बे में थे। जब किसी स्टेशन पर नहीं आता तो बापू समझता माँ के पास होगा, फिर वह झट से हमारे सामने आ खड़ा होता। पृष्ठ संख्या 39 पर हम लोग दिल्ली में उतरे तो वह था ही नहीं, भाग गया होगा, क्या मालूम। बसंती धीरे से बोली। पता है एक स्टेशन पर क्या हुआ, जब गाड़ी चलने लगी तो कहीं किसी ने चेन खींचकर गाड़ी खड़ी कर दी। लोग चिल्लाने लगे, कोई लड़का गाड़ी के नीचे आ गया है। एक लड़का सचमुच गाड़ी के नीचे आ गया था, क्या मालूम वह मेरा भाई ही रहा हो। क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे बापू को पता नहीं चला? सभी लोग खिड़कियों में से बाहर झांक रहे थे, बापू भी, बहुत लोग थे, मुझे कुछ नजर ही नहीं आया। किसी ने कहा दोनों टांगे कट गई हैं, कोई पूछ रहा था जीता है या मर गया, कोई कुछ कोई कुछ, कोई कह रहा था इसे अस्पताल ले जाओ। बहुत खून बह रहा है। और बसंती को जैसे फिर वही आवाज़ें सुनाई देने लगी, वही छिटपुट चेहरे, वही भीड़ आँखों के सामने घूमने लगी। डिब्बे में हमारे गांव के बहुत से लोग थे। अगर हमारे गांव का है तो उठाकर डिब्बे में ले आओ, कोई कह रहा था। किसी ने कहा, मूंगफली बेचने वाला लड़का था, चलती गाड़ी पर चढ़ रहा था, पायदान पर से पांव फिसला तो नीचे जा गिरा। कोई कुछ कोई कुछ, कोई कह रहा था अस्पताल में ले जाओ, अस्पताल में ले जाओ। बसंती की आंखों के सामने सीट पर पालथी मारकर बैठी हुई वह भारी भरकम औरत आ गई, जो बार बार कह रही थी, अस्पताल में ले जाकर क्या करोगे, क्या करोगे, अस्पताल ले जाकर। क्यों भाई, अस्पताल में ले जाएंगे तो बच जाएगा? अरे दोनों टांगे कट गईं तो इसे बचाकर क्या करोगे, सारी उम्र घिसट घिसट कर भीख मांगता फिरेगा। मोटी सी थुलथुल औरत थी, चौड़ा सा मुंह था उसका पसीने से भीगा हुआ, यही कुछ बार बार बोल रही थी। क्या मालूम वह मेरा बड़ा भाई ही रहा हो। तभी गाड़ी चलने लगी थी और भीड़ में खड़े हुए बहुत से मुसाफिर भी लपक लपक कर गाड़ी में चढ़ने लगे थे। मुझे भी अंत तक वह जख्मी लड़का नज़र नहीं आया। बापू ने भी सिर पीछे खींच लिया और चुपचाप अपनी सीट पर आकर बैठ गया। जब रेलगाड़ी दिल्ली पहुंची और सभी लोग गाड़ी में से उतरे, पृष्ठ संख्या 40, तो मेरा भाई रेलगाड़ी में से नहीं उतरा। कहते कहते बसंती की आवाज़ भर्रा आई, तेरा बाप उस स्टेशन पर नहीं गया जहाँ बच्चे की टांगे कटी थी? श्यामा बीबी ने पूछा। बहुत बार जाने को कहता था पर गया नहीं। हमारे गांव का जानकू है ना बीवी जी, मोची का काम करता है। वह बापू से कहता था, मैंने अपनी आंखों से लड़के को देखा है, उसकी दोनों टांगे कटी थी, पर वह तेरा बेटा नहीं है। बापू गया नहीं। क्या मालूम बीवी जी, उसने सोचा हो अगर मेरा ही बेटा है और स्टेशन पर ही पड़ा रेंग रहा है तो उसे यहाँ लाकर क्या करूँगा, यहाँ लाऊंगा तो वह सड़कों पर रेंगेगा, हमारी आंखों के सामने भीख मांगेगा। क्या मालूम वह मर ही गया हो बीबी जी, कौन उसका अता पता बतावेगा। और क्या मालूम बीबी जी, वह जिंदा है तो किसी दिन हमें ढूंढता हुआ आ ही निकले। अंतिम वाक्य कहते ही जैसे बसंती की छाती पर से बोझ उतर गया और वह हल्का महसूस करने लगी। माँ कहती है, तभी से बापू गुस्सैल हो गया है और उसकी आंखें लाल रहने लगी हैं। पर बीबी जी, मैं पूछती हूँ, अगर गुस्सैल हो गया है तो रामू पर क्यों गुस्सा नहीं करता, उसे क्यों सारा वक्त पुचकारता रहता है, मुझे ही क्यों पीटता है? आपको पता है बीबी जी, क्या हमारा बापू बेटियाँ बेचता है। क्या बक रही है? सच बीबी जी, मेरी बड़ी बहन का ब्याह भी गांव में किसी बूढ़े के साथ कर दिया, उससे 800 रुपये लिए, वह गांव में बैठी घास छीलती है। तुझे भी तो बूढ़े के साथ ब्याह रहा था, श्यामा ने हंसकर कहा। मैं बूढ़े लंगड़े के साथ क्यों ब्याह करूंगी बीवी जी, अगर कर दिया तो करके तो देखे बीवी जी, मैं उसे करने ही नहीं दूंगी, मैं फिर से चूहे मारने वाली गोलियां खा लूंगी। और बसंती सिर झटक कर हंसने लगी। पृष्ठ संख्या 41, तू तो कहती थी वह बहुत बुरी होती है। हाय बीवी जी, सच बहुत बुरी होती है। उस दिन सुबह मेरा ब्याह होने वाला था, रात को मैंने गोलियां खा ली और खाकर सो गई। मैंने सोचा सोए सोए मर जाऊंगी, पर आधी रात को बीवी जी मैं उठ खड़ी हुई, मुझे लगा जैसे मेरे अंदर आग लग गई है, जैसे अंदर ही अंदर जल रही हूँ। बाहर पानी का घड़ा रखा था, मैं भाग कर बाहर आई और ढेर सारा पानी पिया, पीती गई, आग बुझे ही नहीं। फिर मुझे कई आई बड़ी जोर की और सभी गोलियां बाहर निकल गईं, कहकर बसंती हंसने लगी। अगर मर जाती तो पगली? तो क्या बीबी जी, मर जाती तो मर जाती, कहाँ है अब वह लंगड़ा? इधर पीछे जहाँ बसों का डिपो है ना बीबी जी, वहाँ एक खोखे में दुकान करने लगा है, कपड़े सीता है, पहले बस्ती में रहता था ना, कहती हुई बसंती सासा उठ खड़ी हुई। अब चलूंगी बीबी जी, 5 नंबर वाली बीबी जाग गई होंगी, वहाँ बर्तन करूंगी। और उन्हीं कदमों सीढ़ियों की ओर जाने लगी। सीढ़ियों के पास पहुँच कर मुड़ गई, पर शाम को चित्रहार देखने आऊंगी। आज चित्रहार है ना, आ जाना आ जाना, श्यामा ने हंसकर कहा। टाटा बीवी जी, टाटा बाय बाय। और सीढ़ियाँ उतरते हुए बसंती फिर से फिल्मी गीत गुनगुनाने लगी। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया, हाय हाय बुढ़ा मिल गया।